जीवित आत्मा माने शरीर के अंदर काम करने वाले, नहीं तो ये आत्मा भी काम नहीं कर सकती, ये शरीर भी नहीं काम कर सकती। इसकी मिसाल एक मोटर और ड्राइवर की दी गई, जैसे मोटर होती है तो ड्राइवर उसके अंदर है तो मोटर चलेगी, ड्राइवर नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी। मतलब ये है कि आत्मा की अंदर
वायु है,
नहीं वायु नहीं है, जल वायु अग्नि आकाश ये तो पांच तत्व अलग है, इनसे ये शरीर बना है। आत्मा निकल जाती है तो भी शरीर के अंदर पांच तत्व रहते हैं, उनको जलाया जाता है, मिट्टी में दबाया जाता है, वो तो जड़ तत्व है। लेकिन आत्मा उनसे अलग क्या चीज है, वो मन और बुद्धि स्वरूप एक ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म, जिसको गीता में कहा गया अणु अणिज्ञान समित है, तो अणु से भी अणुरूप बताया, अणु है लेकिन ज्योतिर्मय है। वो ज्योतिर्मय अणु जो है उसमें अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं मन बुद्धि के अंदर। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाएगा। एक वेद की ऋचा में भी ये बात आई है, मनरेव आत्मा, मन को ही आत्मा कहते हैं। आदमी जब शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, तो ये थोड़ी कहा जाता है कि मन बुद्धि रह गई और आत्मा चली गई। सब कुछ है लेकिन मन बुद्धि की जो शक्ति है वो चली गई, मन आत्मा चली गई। तो मन बुद्धि की पावर जो है वो ही वास्तव में उसका दूसरा नाम आत्मा है। उसमें मन बुद्धि में इस जन्म के और पूर्व जन्म के संस्कार और भरे हुए हैं। संस्कार माने अच्छे बुरे जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का जो प्रभाव बैठ जाता है उसको कहते हैं संस्कार। जैसे किसी परिवार में बच्चा पैदा हुआ, कसाईयों का परिवार है, बचपन से ही वहाँ गाय काटी जाती है, उस बच्चे से जब बड़ा हो जाए पूछा जाए कि तुम गाय काटते हो, बड़ा पाप होता है, तो उसकी बुद्धि में बैठी गई, उसे संस्कार ऐसे पक्के हो गए। तो उसी तरीके से ये संस्कार जो है वो एक तीसरी चीज है। तो मन बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियाँ मिलकर के आत्मा कही जाती है। ये आत्मा जो है आई का अशेष कीट पशु पक्षी पतंगे ये सब आत्मा है, सबके अंदर आत्मा है। इस ये है पृथ्वी, ये है सूरज चांद सितारे आकाश का पर्व। गीता में एक श्लोक और उसमें है, अर्जुन को भगवान ने बताया है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, न तत्भास है ते सूर्यो न शशांको न पावक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम कर्म। माने जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता, वो मेरा परे ते परे धाम है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। पूरा श्लोक इस बात पर है कि परमात्मा कहाँ का रहने वाला है, ये यहाँ साबित किया गया है कि इन पांच तत्वों की दुनिया से परे एक और छठा तुरिया तत्व है ब्रह्मलोक, जिसे अंग्रेजों में कहा जाता है पृथ्वी में अबोध, मुसलमानों में उसको कहा जाता है अर्श, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं, लेकिन अब तो वो भी सर्वव्यापी मानते हैं। जैनी लोग जो हैं वो उसको तुरिया धाम मानते हैं, माना हर धर्म में उसकी मान्यता है, तो वहाँ की हम सब आत्मा रहने वाले, वहाँ पर ही एक सुप्रीम सोल भी है जिसे हम वो जन्म मरण के चक्र से गहरा है, बाकी सब जितनी भी आत्माएं हैं वो जन्म मरण के चक्र में आ जाती है। क्रम क्या है, जितना ही श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा है वो उतना ही ऊपर ऊपर शिव के नजदीक रहने वाली, और जितने ही निष्कष्ट इस सृष्टि पर आकर भी कर्म करने वाली आत्माएं हैं, पार्ट बजाने वाली है, वो सब नीचे नीचे, उनकी संख्या जास्ती होती है। दुष्ट कर्म करने वालों की संख्या जास्ती है, और श्रेष्ठ कर्म करने वाली देव आत्मा और जो 33 करोड़ कही जाती है उनकी संख्या कम। वो श्रेष्ठ आत्माएं जो कि ऊपर ऊपर कम जिनकी संख्या है, जब नई सृष्टि का आवर्तन होता है, सत्युग का आदि नई सृष्टि, तो त्रेता थोड़ा पुराना हुआ, तो द्वापर थोड़ा और पुराना हुआ, और कलयुग बिल्कुल ही
पुराना हो गया।
दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है, सतो प्रधान बचपन, सतो सामान्य किशोरावस्था, रजो प्रधान जवानी और बुढ़ापा और खलास। सृष्टि का भी ये चार अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान को सतयुग कहा जाता है, रजो प्रधान को द्वापर कहा जाता है, और तमो प्रधान को कलयुग कहा जाता है। तो ये आत्माओं का उतरने का यही क्रम है कि जितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं उतना ही श्रेष्ठ युग में उतर। सोलह कला संपूर्ण आत्माएं हैं वो सतयुग में उतर, जो चौदह कला संपूर्ण आत्माएं हैं वो त्रेता में उतर, जो आठ कला संपूर्ण आत्माएं हैं द्वापर में उतर, और कलयुग से कला ही उतर। वो कलाहीन आत्माएं जो दूसरों को दुख देना जिनका धर्म है, जिनके लिए गीता में एक शब्द आया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि नारकी योनि में आकर के गिरती है, तो वो आत्मा की अंत में। जब सारी ही आत्मा नीचे उतर आती है, जिनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता, यही जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, चक्र काटती रहती है, और वो आत्माएं भी जन्म मरण के चक्र काटते काटते शरीर से सुख भोगते भोगते तामसी बन जाती है। ठीक है, कई बार बोया जाएगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, पत्ता छोटा, फल छोटा, वृक्ष छोटा, और आखिरी होते होते वो फल देना ही बंद कर। तो ऐसे ही आत्माओं का ये हिसाब है कि जब एक बार ऊपर से नीचे आ गई तो वो नीचे ही उतरती जाती है। आप 2500 वर्ष की हिस्ट्री ले लीजिए इस सृष्टि की, दुनिया में सुख शांति या अशांति के रूप में बदलती गई है, या दुख और अशांति कम होती गई, हिस्ट्री क्या कहती है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, ऊपर से आत्माएं उतरती गई, तो जनसंख्या के बढ़ने से सृष्टि में दुख और शांति तो बढ़नी ही बढ़नी, न बढ़ती थी। तो एक इंतहा होती है जब सारी की सारी आत्माएं नीचे उतर आती है, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है दुनिया में हमेशा, कीट पशु पक्षी पतंगे इतनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जा रही है देश विदेश में, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, मच्छरों की मक्खियों की संख्या लगातार बढ़ी हो रही। तो फिर आखिर ये कहाँ से आ रही है आत्मा, उसका समाधान गीता के अनुसार भी, लेकिन क्लियर किसी ने नहीं किया, अभी ये बात क्लियर हो रही है कि हाँ ये आत्मा उस लोक से वापस आ रही है, और यही जन्म मरण के चक्र में चक्र काटते काटते यही वो अपना पार्ट बजा रही है। तो जब सारी ही आत्मा उतरने को होती है, तब अंत में जाकर के परमात्मा से इस ऊपर आता है, और आकर के सृष्टि रंगमंच के जो हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्माएं हैं, कोई तो होंगी, अच्छे बुरे पार्टधारी तो होते ही हैं, तो इस सृष्टि रंगमंच पर भी कोई तो श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले होंगे सबसे ज्यादा। उनको अंग्रेजों में कहा जाता है एडम और ईव, सृष्टि के आदि पुरुष। मुसलमानों में उनको कहा जाता है आदम और हवा, आदम और हवा, और हिंदुओं में कहा जाता है उनको तुम आदि देव है शंकर पार्वती जो है उनका ओरिजिन किसी ने नहीं बताया, आदि शक्ति है और वो आदि देव, उनको जन्म देने वाला कौन है किसी को पता ही नहीं। तो इस तरीके से शंकर पार्वती अपने हिंदू परंपरा में, और जैनियों में उनको कहा जाता आदिनाथ और आदिनाथी। देखिए आप शब्दों में कितना सामने है, पहले दुनिया में एक ही धर्म था और एकता थी, वो एकता तभी आ सकती है कि जब सारी दुनिया का माँ बाप एक हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना तभी हो सकती है, जबकि पहले पहले दुनिया में एक ही माता पिता थे, तो वो ठीक है। तो परमात्मा आता है, आकर के वो जो रंगमंच के हीरो हीरोइन पार्टधारी है रामकृष्ण की आत्मा, उनको राम कृष्ण के रूप में तो नहीं होते, क्योंकि कृष्ण का राज्य नारायण का राज्य तो सतयुग में था, राम का राज्य त्रेता में था। वही आत्माएं जन्म मरण के चक्र में नीचे उतरते 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 हमारे आप के रूप में कहीं ना कहीं नर रूप में है, उन नर रूप में परमात्मा शिव प्रवेश करता है, जैसे गीता में एक शब्द आया प्रविष्ट, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। कौन वो सुप्रीम सोल, वो जन्म मरण के चक्र से जा रहा है, वो प्रवेश करके कृष्ण वाली सोल के द्वारा वो पहले माँ का पाठ होगा, जिसका नाम अपनी भारतीय परंपरा में रखा गया था ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ। दुनिया की सबसे जास्ती सहन करने वाली माँ होती है। परमात्मा भी सृष्टि पर आकर के माँ का पार्ट बजाता है, जिसके लिए आपने भारतीय परंपरा में जो गीत गाए हैं परमात्मा की महिमा के, उसमें कहा तुमेव माता च पिता तुमेव, माने वो सबसे पहले सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा के रूप में माँ का पार्ट बजाता है। इतना प्यार देता है कि असुर जो है वो आदि हो जाते हैं उसके वरदान लेने के। असुर से देखो माँ की ये आदत होती है, कोढ़ी काना कुब्जा चोर डकैत लुच्चा लफंगा बच्चा होगा उसको भी अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहिए। बाप जो है कहे निकल बाहर, लेकिन माँ नहीं गोद से अलग करना चाहिए। ऐसे ही ब्रह्मा का पार्ट जो है वो पहले चलता है सृष्टि पर, परमात्मा शिव उसमें प्रवेश करके ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चलाते हैं उस वाणी का नाम पड़ता है मुरली। मुरली नाम क्यों? और आप जानते हैं कि कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाई जाती है, तो हमने ये समझ लिया कोई बांस की मुरली होगी, लेकिन ये तो प्रतीकात्मक लाक्षणिक और अलंकारिक कवियों की भाषा है जो उन्होंने भागवत में लिखी हुई है, महाभारत में लिखी हुई है। उसका वास्तविक अर्थ यह है कि परमात्मा ब्रह्मा के मुख से माने कृष्ण की सोल के द्वारा पहले पहले इस सृष्टि पर आकर के जो प्यार देता है, मीठी वाणी सुनाता है, वो मीठी वाणी इतनी अच्छी लगती है जब समझ में आ जाती है लोगों को कि ये बात क्या है, कि उससे ज़्यादा बढ़कर के मीठी और सुरली दान कोई है ही नहीं, इसलिए उसका नाम रखा गया है मधुर गीता अथवा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, सर्वोपरि ग्रंथ जो भारत का है, सर्वशास्त्र शुरू गीता अथवा उसको मुरली कहा। तो मुरली के द्वारा परमात्मा आकर के ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान सुनाता है, माँ के रूप में वो जन्म देता है ब्राह्मणों को। हम समझते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो समझते हैं कोई ऐसी कोई होगी कि कलाकारी मुँह में कि मुहा किया और ब्राह्मण निकल पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यही पुरानी सृष्टि होती है, इसी पुरानी सृष्टि में परमात्मा आकर के ब्रह्मा के रूप में प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को सुनकर के जो अपने जीवन को बनाते हैं सुधारते हैं उनमें ब्राह्मण के संस्कार आ जाते हैं, वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है जिनको ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा के कुमारी कहा जाता है। ये सृष्टि की ओरिजिन की बात है जो अभी पुनरावृत होती है। माउंट आबू से इस कार्य की शुरुआत गुप्त रूप में आता है, जैसे गीता में कहा है मैं साधारण तन में आए हुए मुझ परमात्मा को मूढ़मति लोग पहचान नहीं पाते। तो ये जो आपको रूप दिखाया अभी नहीं दिखाया, ये व्यक्तित्व तो हो चुका है प्रैक्टिकल। माउंट आबू ने इन्होंने स्थापना के द्वारा परमात्मा शिव ने कराई थी, उनका नाम दादा लेखराज था, सिंध हैदराबाद के रहने वाले ये सिंधी ब्राह्मण जिनके द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ। अभी जो देश देश में ढेर सारे ब्रह्मकुमारी आश्रम खुले हुए हैं, तो इतनी जबरदस्त स्थापना करना 60 साल के अंदर
सामान्य,
हाँ ये सामान्य बात तो नहीं है। तो खैर वो आत्माएं जब उतर आती है परमात्मा शिव कृष्ण की सोल ब्रह्मा के रूप में, उसका नाम दादा लेखराज का नाम देता है ब्रह्मा, और उसके द्वारा जब ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी ढेर सारे तैयार हो जाते हैं, तो परमात्मा जो है तो देखता है कि ब्राह्मण में भी दो किस्म के व्यक्ति होता है, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ भी ब्राह्मण थे और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने भी ब्राह्मण को अपनाया है अपने जीवन में। तो गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसों की संख्या थोड़ी हो जाती है और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसों की संख्या ढेर सारी हो जाती है। तो यही बात ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी हुई। ब्रह्मा से जो पैदा हुए ब्रह्मा वत्स हैं उनमें दुष्ट ब्राह्मण ढेर सारे पैदा हो गए, और जो ज्ञान योग में ज्यादा रस लेने वाले हैं त्यागी तपस्वी वो थोड़े रह गए। लिहाजा क्या होता है परमात्मा को फिर वो स्वरूप छोड़ देना पड़ता है, कृष्ण वाली सुगन माने ब्रह्मा स्वरूप छोड़ देना पड़ता है, वो भी शरीर छोड़ देते हैं 69 में, और उसके बाद परमात्मा प्रवेश करता है राम वाली आत्मा, सशक्त आत्मा, क्योंकि माता का भी पार्ट उस प्यार भरा पार्ट उसी का है, तो पिता का भी पार्ट सख्त पार्ट उसी का है, कहीं ना कहीं तो इस सृष्टि पर होगी ना,
बिल्कुल
उस व्यक्तित्व में प्रवेश करके जो कि ऑलरेडी पहले से ही ब्रह्मा कुमार बनी हुई होती है, उसमें प्रवेश करके वो अपना कार्य आरंभ करता है। ये कार्य के आरंभ होने के बाद क्या होता है कि थोड़े समय के अंदर ही संस्था में फाटा, जैसे सभी धर्मों में हुआ, बौद्धियों में हीनयान महायान दो संप्रदाय, जैनियों में श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय हो गए, मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो संप्रदाय हो गए, क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट दो संप्रदाय हो गए, तो ये दूसरे जो भी दूसरे धर्म है उन्होंने सब ने उस परमात्मा को ही फॉलो किया। परमात्मा ने जब आकर के नई धर्म की स्थापना की है सनातन धर्म की, तो उस समय भी यही प्रक्रिया चली, जब जो कार्य उसने आरंभ किया उसमें आकर के जब उसके जाने के बाद माने ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद उस आश्रम में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दो तरह के लोग स्पष्ट नजर आते हैं, तो आपस में मत में टकराव होता है, हाँ वो बुद्धिजीवी लोग जो है उनकी संख्या कम होती है और वो अलग हो जाते हैं टकराने के लिए, तो क्या होता है कि जब संघर्ष तो बढ़ेगा, तो ये संघर्ष बढ़ते 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 ये चरम उत्कर्ष रूप जो है वो पैदा होता है हर धर्म में, और हर धर्म में वो सच्चाई को जो बड़ा वर्ग है वो नहीं पहचानता, क्योंकि उनको तो गद्दी मिली हुई है, वो माउंट आबू में जैसे अभी भी काबिज है तो वो उस बात को सुनते नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जो कुछ भी वाणी सुनाई है परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा, वो वाणी सत सह अपनी जगह पर शास्त्र संगत है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी आज भी ये बात कह रही है कि शास्त्र सब झूठे हैं, शास्त्र सब झूठे हैं, और हमारे बाबा ने जो कुछ बोला है वही सच्चा है, लेकिन बाबा ने जो कुछ बोला है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है वो उन्हें पता ही नहीं, और सुनने के लिए भी तैयार नहीं, ये स्थिति हर धर्म में ये स्थिति पैदा होती है। तो इस तरीके से शंकर के द्वारा पर जो राम वाली आत्मा होती है त्रेता युग में, वही जन्म के चक्र में आते आते अंत में जो साधारण मनुष्य मानव धर्म होता है उसमें प्रवेश करके परमात्मा शंकर के नाम रूप से संसार में धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना शुरू होता है। तो वो शंकर का जो रूप है वो सख्त पाठ, वो सख्त पाठ के द्वारा परमात्मा जो है वो ब्राह्मणों के संप्रदाय में खड़े कर देते हैं, कुछ चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं निकलती हैं, आपने देखा होगा शंकर जी के बाहों में माला, यहाँ माला लेती है, यहाँ गले में कई तरह की मालाएं पड़ी हुई है, तो माला होती है संगठन की निशान, एक वो प्यार के सूत्र में और ज्ञान के सूत्र में वो मण के रूपी आत्माएं पिरोई गई, उनका संगठन तैयार किया गया, वो संगठन जो है जो सारे संसार में मान्यता प्राप्त है, किस रूप में आप देखिए मुसलमानों में भी माला क्रिश्चियंस में भी माला घुमाई जाती है, बौद्ध लोग भी माला घुमाते हैं, सिख लोग भी माला घुमाते हैं, ये माला का इतना महत्व क्या है कि जो हर धर्म में घुमाई जाती है ये कोई नहीं जानता, वो बाबा ने कि बच्ची जो माला है ये मणके हैं, तुम आत्माओं की याद है, तुम आत्मा रूपी मणकों को परमात्मा जब आता है तो उनको इकट्ठा करता है श्रेष्ठ आत्माओं को, और श्रेष्ठ आत्माओं को जो संगठन तैयार होता है वो सारे संसार में तहलका है, पहले भारतवर्ष में वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर तहलका शुरू है, वो चीज जो है वो माला के संगठन की बात जो है 108 की मणके होते हैं उसमें, आप देखेंगे दुनिया में आज 9 धर्म फैले आसपास पुराना, उसमें से दो पाड़े ऐसे हैं, एक तो ऐसे हैं जो कभी कन्वर्ट नहीं हुए दूसरे धर्म, और दूसरे ऐसे हैं कि जो कन्वर्ट ही होते रहे, मुसलमान आए तो मुसलमानों में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियंस आए तो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए, सिख आए तो सिख में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट होने वाले माना दो प्रकार के वर्ग हुए हैं सनातन धर्म में, एक नॉन कन्वर्ट जो कभी कन्वर्ट नहीं हुआ, भले किसी भी तरह की कोई परीक्षा आई उसने अपने धर्म को छोड़ा नहीं, और दूसरा वो जो कन्वर्ट ही होता रहा, एक से दूसरे धर्म, दूसरे तीसरे धर्म, तीसरे चौथे धर्म, तो दो हिस्से तो वो हो गए हिंदुओं के। तीसरा हिस्सा जो आया आज से 2500 वर्ष पहले इस्लाम के, चौथा बौद्ध धर्म आया, तीन जापान देश में बर्मा मलाया में फैला हुआ है, पांचवा क्रिश्चियन धर्म आया जो यूरोपीय देशों में फैला, अमेरिका में फैल गया, छठा शंकराचार्य का संन्यास था, उसके बाद मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म के खड़े करके मूर्ति पूजा बंद करवा दी और मुस्लिम धर्म फैलाया अरब देशों में, उसके बाद ये गुरु नानक आए और गुरु नानक ने मुसलमानों से टक्कर लेने के लिए भारत के ही जो अच्छे खासे माने हुए कम बुद्धि वाले जो सनातन धर्म के लोग थे उनको कन्वर्ट करके उन्होंने सिख बना दिया और मुसलमानों से किसी से टक्कर इस तरह से टोटल मिला करके अंत में एक ऐसा धर्म आता है आर्य समाज जो सबको आहूत करता है कि तुम आकर के सब इकट्ठे हो जाओ भारतवर्ष में, कोई भी धर्म का हो हम उसे हिंदू बना लें। हिंदुओं ने तो कभी उनको स्वीकार नहीं किया, तो इन्होंने सबका खचड़ा इकट्ठा कर लिया, तो ये आर्य समाज। और एक धर्म ऐसा है जो माला में नंबर ही नहीं पाता, प्रभु की जो माला बनती है, ईश्वर की जो माला बनती है 108 की, उस 108 की माला में उनका नंबर नहीं होता, वो है ये नास्तिक रसियस, जो न स्वर्ग मानते हैं, न नर्क मानते हैं, न आत्मा मानते हैं, न परमात्मा मानते हैं, वो कुछ नहीं मानते, वो अपने नशे में आकर के एटमिक एनर्जी तैयार करते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम चाहेंगे तो दुनिया को नचाएंगे, लेकिन वो अपनी जान में खुद ही फंस जाते हैं, आज तो रूप बिखर गया और उसकी शक्ति जो है भले और उससे ज्यादा जो है वो शक्ति अमेरिका ने धारण कर लिया उससे एटमिक एनर्जी को। तो इस तरीके से 9 धर्म है दुनिया के मुख्य जो अभी आपको गिनाए, ये 9 धर्मों की मुख्य मुख्य चुनी हुई आत्मा परमात्मा इकट्ठी करता है 12 नेम 108 मणके सारी सृष्टि से चुनते, वो 108 मणके जब एटमिक विस्फोट होते हैं सृष्टि पर, ये भी एक समझने की बात, आज से 60 साल पहले 60-65 साल पहले भारत में सूर्य भगवान नहीं थे, आचार्य जय विष्णु भगवान, हाँ साईं भगवान, महाराज भगवान, ये भगवान ढेर के ढेर थे ही नहीं 65 साल पहले, 60-65 साल के अंदर ही ये ढेर के ढेर भगवान पैदा हो गए। अब भगवान एक होगा या ढेर के ढेर होंगे, भगवान तो जरूर एक होगा, लेकिन हिसाब क्या है कि जब सच्चा हीरा आता है सृष्टि पर परमधाम छोड़ करके, तो उसकी भेंट में नकली हीरे ढेर सारे इस बाजार में, दुनिया के बाजार में तैयार, वो नकली हीरे जो है वो चारों तरफ अपना शोर शराबा फैला देते हैं, पंप एंड शो। अभी महेश योगी की एक बिल्डिंग बनी है जबलपुर, उनकी एक बिल्डिंग करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए की वो बिल्डिंग तैयार हुई है जबलपुर, होना क्या है उसमें, बस वही स्वाहा, ये इकट्ठा चर्चा से और स्वाहा का जागरण होना है, उससे कुछ होता तो है ही नहीं, 2500 साल से ये स्वाहा स्वाहा होता चला है, इससे कोई परिवर्तन होता है क्या, परिवर्तन कुछ भी नहीं होना है, कोई बात बना दी तो वातावरण शुद्ध होता है, बजाय वातावरण शुद्ध होने के और ज्यादा बिगड़ रहा है दुनिया,
वो गोल्ड का स्मगलिंग करते हैं अमेरिका से,
चलो वो कुछ भी, एक बात बताई कि भगवान ढेर के ढेर हैं लेकिन नकली हीरे हैं और उनमें पता नहीं चल रहा है कि असली कौन है, असली भी है लेकिन पता नहीं चल रहा है, और उसका प्रूफ ये है कि भगवान जब आएगा तो नई सृष्टि की स्थापना के साथ साथ पुरानी सृष्टि का विनाश का कार्य करेगा, सद्धर्म की स्थापना के साथ साथ जो ढेर के ढेर दुष्ट धर्म फैले हुए हैं उनका भी विनाश का कार्य करता है, विनाश आए चाहे दुष्कृतम, ये पहला श्लोक ही बताता है गीता का। तो परमात्मा इस सृष्टि पर जब आता है तो ये तैयारी पहले कराता है, साथ ही साथ स्थापना गुप्त कराता है और विनाश का कार्य प्रत्यक्ष कराता है, रूस और अमेरिका जिनको अपनी भारतीय परंपरा में महाभारत में कहा गया है याद है, बड़े बड़े धनाढ्य होते थे और बहुत शराब पीते थे, उनकी उनकी बिल्डिंगें होती थी, और ऐसे जो यादव ग्रुप हैं उन यादवों ग्रुप ने क्या किया, थे तो भगवान कृष्ण के कंट्रोल में, उनकी राजाई उनके ऊपर थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनके बुद्ध रूपी पेट से जो मिसाइल से निकले मूसल उन मुसलों से आपस में मिलकर झगड़ करके उन्हें अपने सारे कुल का संहार कर दिया और सारी सृष्टि का विनाश कर दिया। लोगों ने
स्थूल मूसल समझ लिए,
तो अब ये तो समझने समझने की विडम्बना है। वास्तव में है मिसाइल्स की बात, ये पेट जो है इसमें भी कोई बात पचाई जाती है, रखी जाती है। ऐसे ये बुद्ध रूपी पेट भी है, कह रहे तुम्हारे पेट में बात नहीं पचती, तो क्या ये पेट है? क्या ये पेट है? ये बुद्ध रूपी पेट है ना, तो इस बुद्ध रूपी पेट में से वो मिसाइल्स निकले, मूसल निकले, उन मूसलों से ये सारी दुनिया नष्ट होती है। 60-65 साल के अंदर ही ये एनर्जी की तैयारी है। 60 साल के अंदर परमात्मा का भी सृष्टि पर अवतरण हुआ, और 60 साल के अंदर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा आवाज जो लगाई थी उस समय महात्मा गांधी के टाइम पर, हे पतित पावनाओ, वो आवाज भी इस भारत में लग रही थी। आवाज लग रही थी गांधी जी के तत्वावधान में सारे भारत की जनता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की आवाज लगा रही थी, लेकिन आवाज लगाने वाले उनको पता नहीं चला कि परमात्मा इस सृष्टि पर उस समय से ही आ चुका है। तो कहने का मतलब यह है, परमात्मा जब आता है तो एक तरफ विनाश की बाजी भी तैयार कर देता है और दूसरी तरफ स्थापना का कार्य भी विश्वकारी चलाता है, कि ये दोनों कार्य संपन्न हुए हैं समय से। और वो संपन्नता जो है जब पूरी होती है, स्थापना का कार्य पूरी होता है और एटमिक एनर्जी भी की चरम सीमा पैदा हो जाती है, तब जाकर के सृष्टि का एक तरफ विनाश होता है और दूसरी तरफ वो माला तैयार हो जाती है जो सारी सृष्टि का कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले लें। धर्म सत्ता और राज सत्ता जो है वो, जैसे अभी आपने ज्योतिषियों की कुछ वाणियाँ सुनी है, अक्सर निकलती रहती हैं पुराने पुराने 400 साल 500 साल पहले की जो ज्योतिषी हुए हैं, कीरो, कीथ और ये नस्टडम, इनकी भविष्यवाणियाँ निकली हैं, तो सभी ने 2000 को मुद्दा बनाया। लेकिन वो 2000 का जो भी मुद्दा है वो सारी सृष्टि के विनाश का मुद्दा नहीं है, वो वास्तव में सिर्फ ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर की दुनिया का विनाश का मुद्दा है। ये कोई नहीं जानता, ये दुनिया एक कम ऐसे खत्म हो जाएगी तो परमात्मा को कौन पहचान लेगा? परमात्मा के पहचानने के लिए टाइम तो चाहिए। तो वास्तव में ये जो पीरियड है 2000 साल का, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मूल चूल आमूल चूल परिवर्तन ला देगा। बाहर की दुनिया में भी कुछ थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि सारी दुनिया खत्म हो जाए। एटमिक एनर्जी का भी थोड़ा थोड़ा विस्फोट होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि अभी सारी सृष्टि खत्म हो जाए। 2000 का जो पीरियड है उसमें ज्योतिषियों की जो वाणी है वो किसी अंदर की बात है, ब्राह्मण। तो खैर, पुरानी दुनिया का विनाश होता है, नई दुनिया की स्थापना होती है और सब आत्माएं जो है पहले बुद्ध योग से वापस परमधाम जाती है। माने ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर विशेष आत्माएं जो है वो इस बात को समझ लेती है कि परमात्मा का रूप और कार्यकाल क्या है और कैसे ये कार्य चल रहा है। जो द्वैत है, दो फाड़े हो गए ना, वो खत्म और दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। उसके बाद ये बाहर की दुनिया में निकलना शुरू होता है। तो वो सुप्रीम सोच का रूप यहाँ दिखाया गया है कि जैसे हम आत्मा जो बिंदु हैं, वो परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, वो ज्योति बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग बनाया गया, जिसे अपने भारतीय परंपरा में 12 ज्योतिर्लिंगम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिर्लिंग उज्जैन है, काशी है, रामेश्वरम है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये 12 ज्योतिर्लिंगम अपने हम 12 क्यों है, 13 क्यों नहीं, 11 या 10 क्यों नहीं, 12 के ग्रुप, 9 ग्रुप होते हैं 9 धर्मों से चुनी हुई आत्मा। हर धर्म में श्रेष्ठ आत्मा तो होती है ना, तो परमात्मा भी जब आता है तो हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है और चुन करके उनको ब्राह्मण बनाता है। आज की दुनिया में वास्तव में कोई ब्राह्मण नहीं रहता। ये क्या कहते हैं आप ब्राह्मणों की अवहेलना करते हैं? नहीं, तुलसीदास ने ये बात लिख करके छोड़ी है 400-500 वर्ष पहले रामायण। पहले ये वर्ण संकर सब सारे ही वर्ण संकर हो गए, कोई ब्राह्मण और शूद्र नहीं रहा। 400 साल पहले जब उन्होंने लिखा था, अब तो हालत बहुत खराब हो गई, अब तो बहुत ज्यादा व्यभिचार फैल गया, घर घरों में व्यभिचार फैला हुआ है। तो असली ब्राह्मण धर्म की स्थापना परमात्मा आकर के इस समय कर रहा है। उन ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां आपने सुना होगा गाई जाती है, सुना है, सांडिल गोत्र, भारद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र, 9 ऋषियों के आधार पर 9 गोत्र गाए जाते हैं। तो वो 9 ऋषि कोई दूसरे नहीं है, 9 धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली 9 श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो परमात्मा इस सृष्टि से चुनता है ब्राह्मण धर्म है। तो वो 9 आत्माएं जो है उनमें से एक सबसे श्रेष्ठ होगा ना, जो सबसे श्रेष्ठ हुआ, उसके जो 12 के ग्रुप हैं, वो परमात्मा शिव से इतना तादाद में स्थापित करते हैं कि परमात्मा शिव जैसी ही स्टेज उनकी बन जाएगी। इसलिए वो 11 ज्योतिर्लिंगम आज भी 12 ज्योतिर्लिंगम भारतवर्ष में आज पूजे जाते हैं भगवान की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु है। ऋषियों महर्षियों ने उसकी पूजा के लिए बड़ा आकार बना दिया है, वो निराकार का प्रतीक है। निराकार का मतलब ये है कि वो स्टेज में वो 11 जो है 12 है, और उनमें से एक शंकर का रूप जिसे रुद्रावतार कहा जाता है, रुद्र। तो वो साक्षात रुद्र जो है वो ऐसी स्टेज में रहता है कि जैसे कि हमारे शरीर है, कि जैसे कि हमारे शरीर रूपी वस्त्र है ही नहीं, ये इंद्रियों रूपी जो वस्त्र हैं, इंद्रियां जो हैं वो है ही नहीं। ये इस स्टेज में रहना, अपने को आत्मिक स्टेज में सदैव समझना, दूसरों को आत्मा के रूप में देखना, ये ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जाए उसको कहेंगे निराकारी। इंद्रिया जैसे होते हुए भी नहीं है, जैसे कहते हैं ना, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। दुनिया में कितनी भी ग्लानी उड़ रही है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो सुनते हुए ना सुनना। वो तो गॉडफादर है, वो तो महात्मा बुद्ध है, या राम है, या कृष्ण है, नाम रूप अलग अलग दे दिए हैं, लेकिन अलग अलग नाम रूप देते हुए भी एक रूप ऐसा है जो हर धर्म में मान्यता पा। कैसे अपने भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंगम माने भी जाते हैं, रामेश्वरम वगैरह, कहते हैं राम ने भी किसकी उपासना की? राम को भगवान मानते हैं, लेकिन उपासना किसकी की? सेतुबंधु रामेश्वरम में किसकी उपासना की? शिव की उपासना की। तो राम भगवान हुआ या शिव भगवान हुआ? शिव ही हुआ। ऐसे ही गोपेश्वरम मंदिर भी बना हुआ है, गोप कृष्ण को कहा जाता है, तो उससे साबित हो गया कि कृष्ण भगवान नहीं थे, वास्तव में उनका भी कोई ईश्वर है जो जिनको राम राम कृष्ण जैसा उसने बनाया। ऐसे ही केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, काशी विश्वनाथ है, और या सोमनाथ है, ये सभी मंदिर हैं इस बात की यादगार है कि भारतवर्ष में वो निराकार ज्योति को ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। कलयुग के अंत में सारे मनुष्य मात्र पशुओं जैसे हो जाते हैं आचरण करने वाले। उन पशुओं को भी पशु से, जानवर से, बंदर से मंदिर लायक बनाने वाला वो निराकार शिव ज्योति जो है वो एक शिवलिंग नेपाल में स्थापित है। अच्छा, हिंदुओं की बात छोड़ दीजिए, मुसलमान लोग वहां जब हज करने जाते हैं, वहां भी मोहम्मद ने ला करके एक पत्थर रखा था दीवार में, जब उसको उन्होंने संगे अश्वद नाम दिया। वो पत्थर अभी भी वो जब तक चुंबन नहीं कर लेते, सिजदा नहीं माना जाता है उनका पूरा, और हज की यात्रा पूरी नहीं। इसका मतलब वो भी अभी आज तक उस निराकार, हालांकि वो पत्थर को नहीं मानते। मुसलमान लोग पत्थर को, शिवलिंग को तोड़ने वाले रहे, उन्होंने यहाँ आकर के शिवलिंग के पत्थरों को तोड़ा है, लेकिन वहाँ मानते हैं। बहुत से लोग हैं आज भी चीन जापान में देखे जाते हैं तिब्बत में कि वो बटिया रखते हैं गोल स्टूल के ऊपर और उसका त्राटक करते हैं। ऐसे सारे गुरु नानक ने तो कई जगह कहा है एक ओंकार निरंकार सदगुरु अकाल मूर्ख, तो निराकार को मानते हैं, तो निराकार को मानते हैं। तो इस तरह क्राइस्ट क्राइस्ट की बाइबल में कई जगह लिखा हुआ गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति है, माने उस निराकार ज्योति को हर धर्म में मान्यता है। तो सवाल ये पैदा होता है, जब सब धर्म में उसी एक रूप की मान्यता है, तो सब धर्म वाले एक ही को क्यों नहीं परमात्मा के रूप मानते, फिर अलग अलग रूप क्यों मानेंगे? तो ये किसी भी नहीं आ रहा था। अच्छा, खैर, वो निराकार ज्योति जो है जब सृष्टि पर आती है तो विशेष आत्माएं राम और कृष्ण इन दो को चुन करके अपना मुखिया स्थापना। कृष्ण की जो सोल है आखिरी जन्म में आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में जन्म लेती है सिंध हैदराबाद में, और उसमें प्रवेश करके परमात्मा शिव जो है ब्रह्मा के रूप में कार्य करते हैं, प्यार का पाठ हो जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी आप कहीं भी किसी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाए तो आप उनसे पुराणों से पूछना कि बाबा ने कभी किसी को टेढ़ी आंख से देखा है या गलत को वचन कहा या कभी कोई ऐसा है जिसने बाबा ने बाबा के संपर्क में पहुंचने के बाद ये अनुभव किया हो कि बाबा ने हमको दुख दिया? एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी यही कहेगा कि बाबा ने हमको भले 10 मिनट के लिए मिले हो, यही कहेगा कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना दुनिया में हमको किसी से अनुभूत नहीं हुई। तो वो प्यार की ब्रह्मा जैसे अभी भी सीधी लाते हैं टीवी में, तो आप देखते हैं कि असुरों ने वरदान ले लिए है असुर, लेकिन वरदान फिर भी माँ से ले लेते हैं। तो वो रूप दिखाया गया है वास्तव में, और इनके जस्ट अपोजिट एक दूसरा रूप है राम वाली आत्मा जो त्रेता में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा ऐसे जो कहा गया। तो वो राम वाली आत्मा हर कलयुग के अंत में आकर के जब कलयुग का अंत होता है तो परमात्मा उसमें प्रवेश करके और शंकर का नाम रूप से प्रख्यात देते, जैसे इनका नाम रूप प्रख्यात हुआ ब्रह्मा, वैसे उनका नाम रूप प्रख्यात होता है शंकर। ये दोनों ही शक्तियां जो हैं इनकी सहयोगी शक्तियां भी हेतु आते हैं। कृष्ण की सहयोगी शक्ति राधा और राम की सहयोगी शक्ति सीता, इनके वर्तमान रूप में नाम पढ़ते हैं ब्रह्मा की सहयोगी शक्ति सरस्वती और शंकर की सहयोगी शक्ति पार्वती। ये वर्तमान स्वरूप है उन्होंने इस समय के नाम है जबकि कलयुग की दुनिया समाप्त होती है नई सती की सृष्टि रची है। तो चारों आत्माओं का जो स्वभाव संस्कार का कम्बिनेशन होता है, तो हर घर में स्त्री पुरुष के संस्कार आपस में टकराते, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें संस्कार टकराए नहीं, लेकिन एक ऐसी भी दुनिया परमात्मा ने बनाई थी कि सारे संस्कार मिलकर के चार आत्माओं के एक हो गए थे सबसे पहले, वो ये आत्माएं हैं जो सृष्टि के हीरो हीरो हैं, और ये आत्माओं का जो कम्बिनेशन है वो विष्णु की रूप में चार भुजाएं कहते हैं ना, मेरे दुनिया ने शरीर छोड़ दिया मेरी दाहिनी भुजा टूट गई, तो दाहिनी भुजा थोड़ी टूट गई माना सहयोगी शक्ति जो है वो चली गई। तो इसी तरह परमात्मा के कार्य में दो दाहिनी भुजा के रूप में सहयोगी बनते हैं ब्रह्मा सरस्वती माने राधा कृष्ण। ये कड़ा कठोर रूप कभी नहीं अपना, परिवर्तन के लिए इन्होंने हमेशा प्यार का काम, इसलिए इनको परमात्मा ने राइट हैंड स्वीकार। लेकिन जब राइट हैंड से काम नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली भी की जाती है। तो वो दो रूप ये हैं शंकर और पार्वती, चामुंडा का रूप धारण करती है शक्ति आदिशक्ति, और शंकर प्रलय का रूप धारण करता है प्रलय मचाता है संसार, वो राम वाली है। जैसे जो असुर हैं वो शक्ति का रूप धारण किए बगैर परिवर्तन नहीं हो सकते, तो परमात्मा जो है वो इन ब्राह्मणों के अंदर जो ऐसे तत्व तो घुस गए ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का पार्ट बजाते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर, उन ब्राह्मणों के अंदर उनको सुधारने का कार्य के लिए ये ज्ञान बाण मारने वाली वो आत्मा तैयार है। बाण कोई दूसरे नहीं है, परमात्मा ने आकर के इसके मुख के द्वारा जो बातें बोली हैं वो बातों का अर्थ ही ज्ञान बाणों का काम करता है उनके लिए। माने हमको तो वो प्यारे लगते हैं वो महावाक्य, लेकिन उस तरह की जो आत्मा है ब्राह्मण परिवार में घुसी हुई है उनको वो बाण लगते हैं जो उनको घाव पैदा कर देते हैं तलखलाए जाते हैं। इस तरीके से ये दो रूप जो है उनमें ये तीसरा रूप समाया, ब्रह्मा सरस्वती शंकर और पार्वती, चार आत्माओं का कम्बिनेशन जो है कोई विष्णु कहा जाता है। बाकी ऐसा कोई व्यक्ति संसार में कभी हुआ नहीं है जो चार भुजाओं का रहा हो या 10 सिर का रावण रहा हो। 10 सिर का रावण का मतलब ये है कि 10 धर्म दुनिया में मिलकर के और ऐसा संगठन संसार का बनाते हैं प्रजातंत्र राज्य का जिससे सारी दुनिया में तबाही पैदा हो जाए। बाकी परमात्मा ने आकर के राजयोग सिखा करके राजाएं तैयार किए थे। परमात्मा जो स्कूल खोलता है सदगुरु कहा जाता है, तो ज़रूर वो ऐसा वाइस चांसलर बनता होगा ऐसी यूनिवर्सिटी का, यूसी यूनिवर्सिटी का, जहाँ वो कोई बड़ा कार्य बड़ा पद दे करके जाता है। परमात्मा वो बड़ा पद देता है जन्म जन्मांतर के जो राजाएं बने देश में और विदेश में, उन राजाओं को राजाई करने की जो हिकमत है वो उसने सिखाई थी, उसको राजयोग कहा जाता है। वो राजयोग गीता ज्ञान के द्वारा परमात्मा आगे सिखा रहा है, जन्म जन्मांतर का राजा बना रहा है। जो लौकिक बाप होते हैं वो तो एक जन्म की प्राप्ति कराती है, वर्षा देती है। लेकिन ये पारलौकिक बाप जो है जब आता है तो सृष्टि पर बच्चों को आकर के अनेक जन्मों की राजाई दी जाती है। वो अनेक जन्मों की राजाई अभी दी जा रही है। 108 श्रेष्ठ आत्माएं अभी संसार में जल्दी ही ऐसी प्रत्यक्ष होने वाली कुछ ही वर्षों में, जो सारे संसार में तहलका मचाएंगे और सारे संसार की बागडोर जो है वो धर्म की और राजसत्ता की, दोनों की सत्ता की अपने हाथ में। सारी दुनिया माया की पंजे में फंस जाती है, तब ज्ञान शुरू करना सृष्टि पर आता है। माया का पंजा कोई और कोई स्त्री नहीं है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच विकार मनुष्य के अंदर जो भरे हुए हैं, उन पांच विकारों में सारी दुनिया जकड़ गई। आज एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन पांच विकारों की जकड़ से बाहर। जब ऐसी सृष्टि की हालत हो जाती तब परमात्मा शिव आते हैं, जिसकी यादगार ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस महाशिवरात्रि में परमात्मा शिव जब आते हैं तो चारों तरफ दुनिया में अनेक धर्म फैले हुए होते हैं, उन धर्मों में धर्म के नाम पर वितंडावाद ज्यादा है, ज्ञान कुछ भी नहीं है। ज्ञान के नाम पर अज्ञान ही अज्ञान सुनाया जाता है और पैसे को ज्यादा महत्व दिया जाता है, दिखावे को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जो धर्म की स्थापना का कार्य धारणा की बातें हैं वो ना के बराबर होती है। तब परमात्मा ज्ञान सूर्य वो सृष्टि पर आकर के उस अज्ञान अंधकार का विच्छेदन करता है। इसलिए उसकी यादगार में भारतवर्ष में अर्धरात्रि को माघ मास में महाशिवरात्रि है। माने जब आखिरी मास होता है, माने सृष्टि का आखिरी टाइम होता है, कलयुग का अंत होना होता है, तब दुनिया में अज्ञान अंधकार चारों तरफ फैला रहता है। जैसे शक्तिमान सिंह आता है अंधेरा कायम रहेगा, तो असुर तो यही चिल्लाते हैं कि अंधेरा कायम रहे, दुनिया अज्ञान में रहे और हम अपना काम बनाए। तो ये है असुर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिनका मुखिया है काम विकार। वो काम विकार को परमात्मा आकर के सबसे पहले इस चोले के द्वारा फंसा देता है। हमने समझ लिया वो काम विकार कोई देवता का रूप हो, कामदेव उसको नाम दे दिया, लेकिन वास्तव में कोई देवता अलग से नहीं होता। ये हमारे अंदर प्रवृत्ति है, हमारे अंदर की कमजोरी है, हमारे अंदर का वो विकृति है जो उनको पहले भस्म करते हैं। लेकिन उन भस्म करने वालों में नंबरवार होते हैं राजयोग सीख करके, वो सबसे पहले उसको भस्म कर लेता है। कौन? शंकर। शंकर जी दिखाते हैं उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला और काम विकार भस्म हो गया। वो कोई बाहर का थोड़ा ही काम विकार था, ये तो अंदर की चीज थी जो उसने भस्म कर दी, नष्ट कर दी। तो जब मुखिया भस्म होगा तो बाकी जो चोट गए थे वो अपने आप भाग जाए। तो उसी तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि वास्तव में शिव अलग तत्व है और शंकर अलग। गलती के कारण हमने दोनों को एक कर दिया, लेकिन गलती नहीं है वास्तव में, वो हमारी बेसमझी की बात है। ये बेसमझी होने के कारण ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी उस बेसमझी में फंसे हुए। क्या बेसमझी हो गई? कि वो सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि पर आकर के किसी को भी तो आप समान बनाएगा, पढ़ाई पढ़ाएगा, तो टीचर कोई तो ऐसा स्टूडेंट निकलेगा जो उसकी 100% पढ़ाई पूरी धारण कर ले। तो निराकार ज्योति आकर के इस स्वरूप यहाँ संसार में प्रत्यक्ष होती है और दोनों का तादाद भी हो जाता है। आप देखेंगे कोई ये नहीं कहता है कि भाई शिव जो है वो शिव ब्रह्मा एक है, शिव के साथ ब्रह्मा का नाम क्यों नहीं जुड़ा, शिव के साथ विष्णु का नाम क्यों नहीं जुड़ा, शिव के साथ शंकर का ही नाम क्यों जुड़ता है? इसलिए जुड़ता है कि वो शिव जो है वो उसको अपने रूप में समा लेता है, या ये उसकी याद में इतना तल्लीन हो जाता है कि उस तत्व को अपने में समा लेता है। तो वो समाने की स्थिति जो है वो शिव शंकर एक है ये संसार में, वास्तव में आत्मा जो अलग है। ये सुप्रीम सोल वो है जो जन्म मरण के चक्र में कभी आता ही, इसलिए शिव लिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिव रात्रि कही जाती है, शंकर रात्रि नहीं कही जाती। शिव जो है वो ऐसी चीज है जो कि पाप और पुण्य से हमेशा परे है, और जो देहधारी है वो पाप पुण्य के अंदर फंसते रहते हैं। आप देखिए ये ध्यान में बैठे, अगर ये खुद ही परमात्मा का रूप होते, सुप्रीम सोल होते, तो ये किसका ध्यान करना? ध्यान किसका कर रहे हैं? आप मंदिरों में जाइए, पुराने पुराने मंदिरों में आप देखेंगे बीच में शिवलिंग है मुख्य स्थान पर, और आसपास सभी देवताओं के साथ शंकर की भी मूर्ति रखी होती है। इससे क्या साबित हुआ कि और जितने देवताएं हैं उन देवताओं के बीच में, 33 करोड़ देवताओं के बीच में देवदेव महादेव तो वो जरूर है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो भी उसकी उपासना में सामने बैठा हुआ है। आगे किसके सामने? शिवलिंग के सामने। तो शिव ज्योति बिंदु वो सुप्रीम सूर्य और ये हीरो पार्ट धारी सृष्टि का नायक।
ठीक
है, बताया गया है ईश्वर जब इस सृष्टि पर आएगा तो जरूर कोई ना कोई ऐसा ज्ञान का पण तो जरूर ऐसा नया बताएगा जिसमें सारी दुनिया भ्रमित हुई पड़ी, ऐसी नई बात जरूर सुनाएगा जो सारी दुनिया उस बात को न जानती, विपरीत ही जानती है। तो वो बात है जब दुनिया में चारों तरफ भगवान को ढूंढा और कहीं नहीं मिला तो लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया वो तो सर्वव्यापी, जर्रे जर्रे में भगवान है, कण कण में भगवान है, जहां देखो वहां भगवान है। लेकिन वास्तव में गीता में पूरा श्लोक ही इस बात के लिए आ गया है कि मैं तत्थामा परम मम, मैं वहां का रहने वाला हूँ। तो जब गीता जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसकी सबसे ज्यादा टीकाएं हुई है उसमें ये बात साबित हो गई है पूरे श्लोक में, तो एक शब्द आया है विभु, उस शब्द का उन्होंने इतना बड़ा अर्थ कर दिया कि चारों तरफ संसार में यही बात फैली हुई है वो सर्वव्यापक। वास्तव में विभु का अर्थ यह है कि वो विशेष रूप से हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि में भू माना अपना स्थान बना लेता है, याद के रूप में, याद के रूप में स्थान बना लेता है। तो उसका उल्टा अर्थ लगा कर जो उन्होंने परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, वो यहाँ बात समझाई गई है कि परमात्मा वास्तव में सृष्टि का सर्वव्यापी नहीं है। गीता और रामायण भी इस बात के प्रमाण है। गीता में रामायण में लिखा है कि जब जब इस सृष्टि पर अधर्म का बोलबाला होता है तब तब मैं आता हूँ, आता हूँ से साबित ही हो गया कि वो नहीं था तब तो आया, नहीं तो आने की उसको क्या दरकार थी। दूसरी बात श्लोक जो अभी आपको बताया वो तो पक्का पक्का साबित कर रहा है कि परमात्मा ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम धाम नाम, तीनों जब ऊंचा है तो वो ऊंचा ही बैठेगा, नीचे बैठेगा, राजा भी होता है इस दुनिया का तो वो ही ऊंची गद्दी में बैठता है। तो हम परमात्मा को कौन कर्म क्यों मिला दिया है? सन्यासी जो भाव विभोर होते हैं तो खड़ताले बजा करके कहते हैं हे प्रभु हमें दर्शन, जब प्रवचन करते हैं तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी आत्मा सब परमात्मा शिवो हम परमात्मा के रूप है, हम ही भगवान है। तो ये बात तर्कसंगत साबित हुई। एक बात पर पक्का रहना चाहिए, ये क्या बात हुई, कीर्तन करने लगे तो प्रभु जी हमें दर्शन दो, अब दर्शन कहाँ से दे, तुम्हारे अंदर खुद ही भगवान बैठा हुआ है, तुम खुद ही भगवान के रूप हो। यहाँ दिखाया गया है जो प्रवचन सुनने वाले हैं वो जिस समय प्रवचन सुनते हैं गुरु जी महाराज का तब तो भाव भी और उनका भी गुरु कहना हाँ परमात्मा सर्वव्यापी बहुत अच्छा ज्ञान सुना, घर में पहुंचे भाई भाई की हत्या करने लगे,
भगवान ही दिखाई
दिया, अब उन्हें भगवान नहीं दिखाई दिया भाई भाई के अंदर। ये विरोधाभास एकदम इतना कैसे आप पैदा हो गया? वास्तव सबके अंदर अपनी अपनी आत्मा, परमात्मा उनसे अलग। अपनी भारतीय परंपरा में मैथोलॉजी जो चली है वो शंकराचार्य की मैथोलॉजी अलग है और माध्वाचार्य की मैथोलॉजी अलग है। माध्वाचार्य की जो गीता है उसमें टीप उसमें गीता में बताया गया है कि आत्माएं सब अलग अलग हैं और परमात्मा उनसे अलग है, और शंकराचार्य की गीता में बताया गया है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस दुनिया में जो कुछ भी देखने में आ रहा है वो सब परमात्मा का। माध्वाचारी ने बताया कि ये आत्मा में संस्कार अलग है, इस आत्मा में संस्कार अलग है, इस आत्मा में संस्कार अलग है, ये आत्मा जब शरीर धारण करेगी जाके गर्भ में तो ये अपना ही पार्ट बन जाएगी, इसका पार्ट दूसरी आत्मा से मिल नहीं सकता।
नहीं, जब वो छोड़ेगी तो जाके अपनी सुप्रीम पावर के साथ मिल लेगी।
आप ये समझिए जो हम अभी आप बोले हैं इस तरह आपको पहले से ही बोलना चाहिए।
नहीं
देखिए, हम मिसाल ये देते आए अभी हमें हमेशा शास्त्रों में कि हम सब आत्मा जो जुदा है सागर में, और सागर अलग से बुदबुदे सब सागर में समा जाते हैं, माने हम उस सागर का अंश है, यही कहा ना। लेकिन एक बात हम भूल गए, अगर हम बुदबुदे हैं, हम सागर के अंश हैं, तो जो अंश है एक किलो भर पानी हमने ले लिया सागर में से, उसमें जो गुण होगा वही सागर के पानी में भी गुण होना चाहिए ना। ये पानी हमने उसमें मिला दिया, दोनों का गुण अभी भी एक ही है। लेकिन हमारे आपके अंदर सबके अंदर ये संस्कार अलग अलग कैसे हैं, ये अलगाव कहाँ से आ गया, और जन्म जन्मांतर ये अलगाव चलता चला जा रहा है। दूसरी बात, इसका एक और परिहार है, कोई चाहता है अगर हमारी आत्मा उसमें जाकर के लीन हो जाए सुप्रीम सोल में जाकर के, इसमें जाकर के लीन हो जाए, सागर में पानी जो है चुल्लू भर मिला दिया गया, वो तो खत्म हो गया अस्तित्व हमेशा के लिए। फिर ये बात कहाँ से आती है शास्त्रों में, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतार, जब जब त्रेता युग होता है तब तब राम का अवतार होता है। नहीं अजर अमर तो सभी आत्मा है, वो तो बात ठीक है, वो एक अलग बात है, आत्माएं सभी अजर अमर है, उनका अस्तित्व उनका संस्कार सबका अलग अलग है, अजर अमर है। लेकिन हर आत्मा का जो पार्ट है उस ज्योति जन्म में टैप रिकॉर्ड में भरा हुआ है अनेक जन्म। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा उतरेगी तो सतयुग से आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक वो उतने ही जन्म लेगी जितना पहले चतुर्युगी में उसने जन्म लिया। अगर राम की आत्मा होगी तो त्रेता युग में फिर वो राम के रूप में जन्म लेगी,
ठीक।
कृष्ण नारायण की आत्मा होगी तो वो सतयुग के आदि में फिर नारायण के रूप में राज्य करेगी। इस तरह हर आत्मा का पार्ट जो है वो शरीर रूपी चोला बदलने का निश्चित है, हर 5,000 वर्ष के बाद वो ज्यों का त्यों पुनरावर्तन होता है। तो आत्मा सो परमात्मा नहीं है, सुप्रीम सोल वो हमेशा अलग है, वो जन्म-मरण के चक्र में आने लगेगा तो हमको छोड़ाने वाला कोई भी नहीं। वो सुप्रीम सोल की तुलना हम आत्माओं से नहीं की जा सकती, हम आत्मा हीरो पार्टधारी बन सकते हैं, हीरोइन पार्टधारी बन सकते हैं, हम जो विलियन का पार्ट बजा सकते हैं, हम और साधारण आत्माओं का पार्ट बजा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम सोल जैसा पार्ट किसी का नहीं। वो तो उसका तृतीय पार्ट है, वो बार बार इस सृष्टि पर आता भी नहीं है, जैसा लिख दिया है शास्त्रों में संभवामि युग योगी, मैं हर युग में आता हूँ। अरे हर युग में आता है तो द्वापर के अंत में जब महाभारत युद्ध कराया कृष्ण के रूप में आया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए आया था परमात्मा? अरे हर युग में आने की क्या जरूरत है, साधारण बाप होता है वो भी तो बच्चों के लिए मकान तब तैयार करता है जब मकान पुराना हो जाता है, उस पुराने मकान से काम नहीं चलता, जब तक चल सकता है तब तक मरम्मत कराता रहता है। इस सृष्टि रूपी मकान की भी यही हालत, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये आकर के मरम्मत करते रहे जगह जगह, किसी ने अरब देश में आके मरम्मत की, किसी ने यूरोपीय देश में मरम्मत की, किसी ने चीन जापान में मरम्मत की, आकर के मरम्मत की है, नया मकान तो किसी ने नहीं बनाया, नई सृष्टि नहीं बनाई, मरम्मत कितने दिन चलेगी, थोड़े टाइम तक वो धर्म का प्रभाव रहता है फिर वो निरस्त आखिरी, तो फिर भी उसी सुप्रीम सोल बाप को जो धर्म पिताओं का बाप बापों का भी बाप है उसको इस सृष्टि पर उतरना पड़ेगा, वो आकर के आमूल चूल सारा ही परिवर्तन कर देगा। तो वो सर्वव्यापी नहीं है, वो तो इस सृष्टि पर हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके पार्ट गया। आपने जीसस का नाम सुना?
अच्छी तरह सुना,
अच्छी तरह से सुना। क्राइस्ट का नाम सुना? ये दो नाम क्यों? क्रिश्चियंस लोग ये मानते हैं कि वो व्यक्ति जो पहले ख्याति प्राप्त नहीं था उसका नाम जीसस था, फिर जब ख्याति प्राप्त हो गया तब उसका नाम क्राइस्ट पड़ गया। इसका रहस्य कोई नहीं जानता, ये परमात्मा आकर के बता रहे हैं कि कोई भी ऊपर से सोल नहीं उतरती है तो जिसमें भी प्रवेश करती है उसका नाम बदल देती है, पहले नरेंद्र नाम था, बाद में विवेकानंद नाम पड़ गया। आचार्य ऋषि का भी ऐसा ही हुआ, पहले ये साधारण एक लेक्चरर थे, सोल ने प्रवेश किया, आचार्य ऋषि नाम पड़ गया। तो हर आत्मा जो ऊपर से नीचे उतरती है, वो जिसमें प्रवेश करती है उसको कन्वर्ट कर देती है। जिसमें प्रवेश करती है वो भारत की ही आत्मा होती है सनातन धर्म में, और प्रवेश करके उसको कन्वर्ट करके अपने धर्म खींच ले जाती है। ऐसे ऐसे कन्वर्ट शुरू हुआ दूसरे दूसरे धर्म, भारतवासियों से ही दूसरे दूसरे धर्म पनपे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो सुप्रीम सोल की तुलना हम आत्माओं से नहीं हो सकती। हम आत्माएं जो हैं वो उसके हमारे मुकाबले वो हमेशा तुरीय है। वो तो सुख भी नहीं भोगता है, दुख भी नहीं भोगता है, वो सुख दुख से हमेशा ही परे रहने वाला। हाँ ये बात जरूर है, जब इस सृष्टि पर आकर के राजयोग सिखाता है तो वो पढ़ाई ऐसी पढ़ाता है कि हम आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ संसार इस स्टेज को प्राप्त करें कि इस सृष्टि पर रहते हुए भी दुख सुख में रहते हुए भी अपनी ऐसी स्टेज बना लें कि दुख के समय में हम दुखी न हों और सुख के समय में हम बहुत ज्यादा सुखी न हों। सामान्य स्थिति स्थिति प्रज्ञ जिसका नाम दिया गया, लेकिन वो हमारी अवस्था हमेशा के लिए नहीं रहेगी, उसकी हमेशा के लिए रहेगी, वो सुप्रीम सोल है। तो फिर आत्मा परमात्मा एक कहाँ हुआ, परमात्मा सर्वव्यापी कहाँ हुआ, सुप्रीम सोल तो अलग ही हुआ हमेशा। अच्छा
हमारा एक निवेदन है,
आप ये तो मैंने आपसे पहले ही कह दी
पकड़नी
है, आपको पहले बताया था।
नहीं तो ये है, बहुत कुछ समझ गए भाई।
नहीं अभी तो एक बात ध्यान किया, ये दो बातें, एक तो शिव शंकर एक नहीं है, अलग अलग आत्माएं, दूसरा परमात्मा सर्वव्यापी है। बाकी ऊर्ध्व मूलम मध शाखा अश्वत्थम महोरव्यम जिस सच की बात है वो अभी बहुत समझाने की बात है।
हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा विश्व विजय करके दिखलावे, ये बोलते तो है लेकिन ये नहीं जानते शरीर की तीन वस्त्र कौन से। जिन तीन वस्त्रों ने सारे विश्व में तहलका मचाया था, विश्व में विजय करके दिखलाई, वो तीन शरीर की वस्त्र ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन वो समझना है। अभी समझ में आता है हमें, उनके रंग भी वैसे ही दिखाए गए। ऊपर वाला जो है वो शंकर क्रांति का सूचक है, बीच वाला सफेद वस्त्र है, नीचे वाला ब्रह्मा का वस्त्र है। गांधी जी जैसे कहते रहे राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, आ गया राम राज्य, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा हमेशा चिल्लाते रहे राम राज्य लाएंगे, स्वर्ग आएगा, स्वर्ग आएगा, स्वर्ग आने ही वाला है, अब स्वर्ग की जगह है ब्रह्मा कुमारी आता है।
आपसे
आपसे